एकत्र ज्ञानो गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानो गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार श्रोताओं, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
नमस्कार,
मैं यहाँ इन स्रोतों से मिले विचारों का विश्लेषण करने और उनके गहरे मतलबों पर रोशनी डालने के लिए हूँ।
और मैं हूँ आपका साथी मेजबान, इस ज्ञान यात्रा में आपका सहयात्री। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं वो है जेम्स ब्राइस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ।
हाँ, अमेरिकी राष्ट्रमंडल। ये किताब सोचिए 1888 में छपी थी, लेकिन आज भी ये गजब की प्रासंगिक है।
वाकई 1888 की किताब आज भी? कैसे?
इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अमेरिकी इतिहास की बात नहीं करती, ये समझाती है कि लोकतंत्र, कोई भी लोकतंत्र, असल में सांस कैसे लेता है, चलता कैसे है। ब्राइस ने सिर्फ संविधान के पन्ने नहीं पलटे, उन्होंने उन असली ताकतों को पकड़ा जो पर्दे के पीछे से एक लोकतंत्र को चलाती हैं।
अच्छा, मतलब संविधान से परे की ताकतें।
बिल्कुल, और क्योंकि वो एक बाहरी पर्यवेक्षक थे, एक अंग्रेज जो अमेरिका को देख रहा था, तो उनकी नज़र बहुत पैनी थी। उन्होंने 19वीं सदी के अमेरिका का जो खाका खींचा ना, उसके सबक आज भी दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए, हाँ, हमारे अपने अनुभवों के लिए भी एक आईने जैसे हैं। ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं, आज को समझने का एक जरिया है।
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो चलिए पहले उस शख्स के बारे में थोड़ा जानते हैं जिसने ये आईना हमें दिखाया। जेम्स ब्राइस कौन थे?
हाँ, तो लॉर्ड ब्राइस कोई सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, वो एक ब्रिटिश न्यायविद थे, इतिहासकार भी थे और एक मंझे हुए राजनेता भी। ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे, कैबिनेट मंत्री का पद संभाला।
और इतना ही नहीं, वो अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत भी रहे।
अरे वाह,
मतलब सिद्धांत भी जानते थे और जमीनी हकीकत भी।
सही कहा, और यही बात उनके विश्लेषण को इतना खास बनाती है। उनमें ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर वाली अकादमिक गहराई तो थी ही, पर साथ में राजनीति कैसे काम करती है इसका व्यावहारिक अनुभव भी था। और सबसे बड़ी बात, एक विदेशी होने के नाते उनमें वो निष्पक्षता थी, वो दूरी थी जो शायद अंदर वाले व्यक्ति में ना हो।
मतलब उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी?
अरे बिल्कुल नहीं, उन्होंने पूरे अमेरिका की यात्रा की है, राष्ट्रपति से लेकर आम किसान तक सबसे मिले, बात की। इससे उन्हें वो समझ मिली जो सिर्फ कागजों से नहीं मिल सकती। और हाँ, उनका वो तुलनात्मक दृष्टिकोण कि ब्रिटेन या यूरोप में चीजें कैसे होती हैं और अमेरिका में कैसे, ये उनके विश्लेषण को और भी धार देता है।
समझ गया, तो इस अनुभवी नजर से लिखी गई द अमेरिकन कॉमनवेल्थ का असल मकसद क्या था? क्या बताना चाहते थे ब्राइस?
उनका लक्ष्य काफी बड़ा था। वो 1880 के दशक के अमेरिका की एक पूरी तस्वीर पेश करना चाहते थे, सिर्फ राजनीति नहीं, समाज भी।
ये सिर्फ संविधान की टीका टिप्पणी नहीं है, ये इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि कागज पर लिखे नियमों से हटकर अमेरिकी लोकतंत्र असलियत में कैसे काम करता है।
हाँ, मतलब कौन सी चीजें उसे ताकत देती हैं और कौन सी कमजोर करती हैं। ब्राइस सिर्फ सरकारी ढांचे को नहीं देख रहे थे, वो अमेरिकी समाज की, आप कह सकती हैं, नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
बिल्कुल, और किताब का जो केंद्रीय विचार है वो ये कि अमेरिकी लोकतंत्र की कामयाबी का राज सिर्फ उसके लिखे हुए संविधान में नहीं है। असली कहानी तो कुछ अदृश्य शक्तियों में छिपी है जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं।
अदृश्य शक्तियाँ जैसे कि? हाँ, ब्राइस इन्हीं को सामने लाते हैं। पहली, राज्य सरकारें, उनकी भूमिका जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी, राजनीतिक दल, उनकी वो पूरी मशीनरी जो संविधान का हिस्सा न होते हुए भी सत्ता को चलाती है। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी, लोकमत, पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय। ब्राइस मानते थे कि यही अमेरिका का असली आखिरी शासक है।
लोकमत, असली शासक, ये तो सोचने वाली बात है,
है ना? और इसीलिए ये किताब आज भी इतनी अहम है।
अच्छा, ये भी कहते हैं कि ये किताब एक तरह से एलेक्सिस डी टॉकविल की जो मशहूर किताब है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उसका अपडेट जैसी है।
हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। टॉकविल ने गृह युद्ध से पहले के अमेरिका को देखा था, ब्राइस उसके लगभग 50 साल बाद के बदले हुए अमेरिका का विश्लेषण कर रहे थे। तो ये सिर्फ सरकार का अध्ययन नहीं, बल्कि एक पूरी बदलती हुई सभ्यता को समझने की कोशिश थी।
चलिए, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब इन अदृश्य शक्तियों और ब्राइस के दूसरे जरूरी विचारों में थोड़ा और गहरा उतरा जाए।
जरूर, कहाँ से शुरू करें?
शुरू करते संविधान की औपचारिक दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर राज्य और स्थानीय शासन की भूमिका से। आपने कहा था इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
हाँ, और ये ब्राइस के विश्लेषण की एक बुनियाद है। उनका कहना था कि सिर्फ वॉशिंगटन डीसी को देखकर अमेरिका को नहीं समझा जा सकता, असली कहानी तो राज्यों में है। सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली ज्यादातर चीजें, स्कूल, सड़कें, स्थानीय कानून, ये सब कौन तय करता है? राज्य सरकारें ही तो करती हैं।
हाँ, ये तो है।
तो ये सिर्फ केंद्र की छोटी इकाइयां नहीं है, ये अपने आप में सत्ता के बड़े केंद्र हैं।
और यहीं से वो विचार आता है ना कि राज्य लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं, लैबोरेटरीज ऑफ डेमोक्रेसी।
बिल्कुल, ब्राइस ने ये चीज पहचानी कि ये राज्य ऐसी जगहें हैं जहां नए नए सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग किए जा सकते हैं बिना पूरे देश को जोखिम में डाले।
अच्छा, कैसे?
जैसे मान लीजिए कोई नया कानून है या कोई नई नीति, उसे किसी एक राज्य में लागू करके देखा जा सकता है। अगर सफल हुआ तो दूसरे राज्य उसे अपना सकते हैं, अगर फेल हुआ तो नुकसान उसी राज्य तक सीमित रहेगा। ये जो विकेंद्रीकरण है, ये अमेरिका को एक तरह का लचीलापन देता है।
ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन क्या ब्राइस ने सिर्फ तारीफ ही की?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसकी कमियों को भी उजागर किया। उन्होंने राज्य विधानसभाओं में जो भ्रष्टाचार था और जिसे वो मीडियोक्रिटी कहते थे, यानी औसत दर्जे का साधारण सा नेतृत्व, उसकी भी तीखी आलोचना की। तो प्रयोगशाला तो थी, पर उसमें कुछ गड़बड़ियां भी थीं।
मतलब एक संतुलित नजरिया था उनका।
बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस दूसरी अदृश्य शक्ति पर, राजनीतिक दल। ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखे थे, फिर ब्राइस ने इन्हें इतना जरूरी क्यों माना?
ये उनके विश्लेषण का एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी हिस्सा था। उन्होंने पहचाना कि ये पार्टियां भले ही संविधान में न हों, पर अमेरिकी सरकार चलाने के लिए एकदम जरूरी हो चुकी थीं। सत्ता इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी।
उन्होंने इनकी बनावट को कैसे समझाया?
उन्होंने पूरा खाका खींचा। गली मोहल्ले के छोटे नेता, जिन्हें वार्ड बॉस कहते थे, वहां से लेकर राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों तक, कैसे प्राइमरी चुनाव होते हैं, उम्मीदवार कैसे तय होते हैं, पार्टियां जमीन पर काम कैसे करती हैं, ये सब उन्होंने विस्तार से बताया।
और इसी से जुड़ी है वो पार्टी मशीन और बॉस सिस्टम वाली बात, है ना? टैमनी हॉल का जिक्र आता है शायद।
हाँ बिल्कुल, टैमनी हॉल न्यूयॉर्क का एक बहुत बदनाम पार्टी संगठन था। ब्राइस ने ऐसे उदाहरणों से दिखाया कि कैसे ये शक्तिशाली अनुशासन वाली पार्टियां काम करती थीं।
कैसे, क्या करती थीं ये मशीनें?
ये संरक्षण बांटती थीं, मतलब सरकारी नौकरियां, ठेके या दूसरे फायदे, इसके बदले में वफादारी खरीदती थीं और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखती थीं। खासतौर पर जो नए अप्रवासी लोग आते थे, जिन्हें सिस्टम में जगह बनाने के लिए मदद चाहिए होती थी, ये मशीनें उनका खूब फायदा उठाती थीं।
तो ब्राइस ने इसे अच्छा माना या बुरा?
देखिए, ब्राइस ने माना कि शायद ये मशीनें वोटरों को एकजुट करने और सरकार चलाने के लिए उस समय जरूरी थी, लेकिन उन्होंने इसके भयानक नतीजों को भी साफ साफ दिखाया, जैसे कि अंधभक्ति, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, और ये कि काबिलियत की जगह चमचागिरी को बढ़ावा मिलता था।
बाप रे,
मतलब ये पार्टियां सत्ता की असली मशीनें थी।
हाँ, कुछ हद तक, लेकिन ब्राइस के अनुसार असली शासक कोई और था।
कौन?
लोकमत, पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय। ये उनके काम का शायद सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, मैंने भी सुना है, ये उनके विश्लेषण का एकदम केंद्र है। उनका मानना था कि अमेरिका में असली ताकत, अंतिम शक्ति न राष्ट्रपति के पास है न कांग्रेस के पास, वो है लोगों की सामूहिक इच्छा के पास, लोकमत।
यही तय करता है कि क्या होगा और क्या नहीं।
बिल्कुल, नेता तो आते जाते रहते हैं, पर लोकमत की जो धारा है वो ज्यादा स्थायी और शक्तिशाली है, ऐसा ब्राइस मानते थे।
पर ये लोकमत बनता कैसे है और ये शासन कैसे करता है, इसके बारे में ब्राइस ने क्या कहा?
उन्होंने बताया कि ये कई चीजों से मिलकर बनता है, उस जमाने के अखबार यानी प्रेस, राजनीतिक दल खुद, स्थानीय नेता, चर्च और दूसरे सामाजिक संगठन, ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं, लोगों के विचारों को एक दिशा देते हैं।
अच्छा, और फिर ये शासन कैसे करता है?
चुनावों के जरिए, जाहिर है, नेताओं पर दबाव बनाकर और एक तरह की आम सहमति बनाकर कि कौन से मुद्दे जरूरी हैं और कौन सी नीतियां लोगों को मंजूर हैं।
तो ब्राइस ने इसे अच्छी चीज माना? हाँ भी और नहीं भी। उन्होंने इसकी ताकत को पहचाना, आम लोगों का जो सहज ज्ञान होता है, कॉमन सेंस, और उनकी नैतिकता, लेकिन उन्होंने इसकी खतरनाक कमजोरियों को भी देखा।
कमजोरियां? कैसी कमजोरियां?
एक चीज जिससे उन्होंने कहा, फेटलिज्म ऑफ द मल्टीट्यूड, मतलब बहुमत का भाग्यवाद या अंधविश्वास। ये मान लेना कि जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं वही सही है और उसका विरोध करना बेकार है।
अरे हाँ, ये तो आज भी दिखता है।
बिल्कुल, ये सोच आजाद ख्याली के लिए जहर जैसी हो सकती है। ब्राइस ने यह भी चिंता जताई कि लोकमत अक्सर भावुक होता है, आसानी से भड़क जाता है और जटिल मुद्दों को बहुत सतही तौर पर समझता है।
ये चेतावनी तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में और भी ज्यादा सटीक लगती है।
है ना? और देखिए, इसी लोकमत और पार्टी सिस्टम से जुड़ा है ब्राइस का एक और बहुत मशहूर अवलोकन। उनका वो अध्याय जिसका शीर्षक ही एक सवाल है, Why Great Men Are Not Chosen Presidents?
हाँ, महान लोग राष्ट्रपति क्यों नहीं चुने जाते, ये तो बहुत बार सुना है। इसका क्या मतलब था?
मतलब ये कि ब्राइस का तर्क था कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, खासकर राष्ट्रपति चुनने का जो तरीका है, वो अक्सर ऐसे नेताओं को चुनती है जो सुरक्षित हों, जाने पहचाने चेहरे, जो किसी को ज्यादा नाराज ना करें, मतलब दूसरे दर्जे के, औसत लेकिन सबको स्वीकार्य नेता,
न कि सबसे ज्यादा काबिल या सबसे दूरदर्शी लोग।
हाँ, उनके मुताबिक ऐसा ही था। प्रतिभाशाली असाधारण व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं।
पर ऐसा क्यों, क्या कारण बताए उन्होंने?
कई कारण गिनाए। एक तो पार्टी कन्वेंशन का तरीका, जहां अक्सर मजबूत उम्मीदवारों के बीच खींचतान होती है और फिर किसी कम विवादास्पद समझौते वाले उम्मीदवार, डार्क हॉर्स कहते हैं ना जिसे, पर सहमति बन जाती है।
अच्छा।
दूसरा, आम जनता की पसंद। हो सकता है लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान या जटिल नेता से ज्यादा एक सरल, भरोसेमंद लगने वाले चेहरे को पसंद करते हो। और तीसरा, जो ब्राइस ने देखा कि उस जमाने में अमेरिका की जो सबसे तेज प्रतिभाएं थी वो राजनीति में आने के बजाय व्यापार और उद्योग में जा रही थी।
ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया खुद ही औसत दर्जे के नेतृत्व को बढ़ावा दे सकती है।
हाँ, ब्राइस के अनुसार ये सिस्टम का एक अनपेक्षित नतीजा था।
तो इस पूरी गहरी छानबीन के बाद अगर हम द अमेरिकन कॉमनवेल्थ के मुख्य संदेशों को निचोड़ना चाहें तो वो क्या होंगे? कोई 3-4 सबसे जरूरी बातें।
हाँ जरूर। मेरे ख्याल से पहला तो ये कि व्यावहारिकता सिद्धांत से ज्यादा मायने रखती है। अमेरिकी लोकतंत्र आदर्शों से ज्यादा इस बात पर चलता है कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। नतीजा जरूरी है, रास्ता भले ही सीधा ना हो।
ठीक है। और
दूसरा, लोकमत ही असली राजा है। अंत में जाकर अमेरिका का शासक जनता की राय ही है, अपनी पूरी ताकत, उलझनों और खतरों के साथ। तीसरा, संविधान और असलियत में फर्क होता है। कागज पर लिखे नियम और जमीन पर चलने वाली राजनीति, ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। असली खेल समझना है तो पार्टी मशीन जैसी अनौपचारिक ताकतों को देखना ही पड़ेगा।
और चौथा?
चौथा, छोटे केंद्रों की बड़ी ताकत। राज्य सरकारें सिर्फ केंद्र के नीचे काम करने वाली इकाइयां नहीं हैं, वो लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं और सत्ता के अपने आप में महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
ये चारों बातें तो आज भी किसी भी लोकतंत्र को समझने के लिए बहुत काम की हैं। जैसे आपने लोकमत की बात की, जरा सोचिए आज सोशल मीडिया के जमाने में ये लोकमत कितना ज्यादा जटिल और शायद बिखरा हुआ भी हो गया है।
सही बात है।
या वो पार्टी मशीनें, हो सकता है पुराने बॉस सिस्टम जैसा न हो, पर क्या आज भी पार्टियों के अंदर सत्ता कुछ ही हाथों में सिमटने और वफादारी को योग्यता से ज्यादा अहमियत देने के नए तरीके नहीं दिखते? ब्राइस का विश्लेषण हमें ये सवाल पूछने का एक फ्रेमवर्क देता है।
बिल्कुल। और इस किताब में कई ऐसे विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। कुछ यादगार बातें अगर हम श्रोताओं के साथ साझा करें।
हाँ, क्यों नहीं। पहला तो यही जो हमने अभी कहा, अगर संस्थाओं को समझना है तो उन्हें चलते हुए देखो, सिर्फ उनके नियम मत पढ़ो। मतलब प्रैक्टिकल अनुभव थ्योरी से ज्यादा सिखाता है।
सही। दूसरा, वो राज्यों वाला विचार कि वो लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं जहां नए प्रयोग चलते रहते हैं।
हाँ, ये भी।
तीसरा, लोकमत के बारे में वो चेतावनी, बहुमत का भाग्यवाद। ये मानना कि बहुमत हमेशा सही होता है और उस पर सवाल उठाना बेकार है, ये खतरनाक सोच है।
बिल्कुल। और चौथा?
और चौथा, वो चुपता हुआ सवाल कि क्यों असाधारण प्रतिभा वाले लोग अक्सर शीर्ष पद तक नहीं पहुंच पाते और इसमें व्यवस्था की क्या भूमिका है।
ये सारे विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना? पहला वाला याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ कानून नहीं, लोगों का बर्ताव भी है। दूसरा हमें विकेंद्रीकरण और कुछ नया आजमाने की हिम्मत का महत्व बताता है।
हाँ।
तीसरा हमें लोकतंत्र में बहुमत के साथ साथ अल्पमत की आवाज और आलोचनात्मक सोच की अहमियत समझाता है। और चौथा,
वो हमें किसी भी चुनाव प्रणाली के अनचाहे नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि प्रक्रिया खुद परिणाम को कैसे बदल सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्राइस का ये लगभग 150 साल पुराना विश्लेषण आज हमारे लिए कैसे उपयोगी है आज की दुनिया में।
देखिए, कई तरीकों से। पहला, ये हमें किसी भी लोकतंत्र को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है। सिर्फ औपचारिक ढांचे को नहीं, जैसे संसद या चुनाव, बल्कि उसके पीछे काम कर रही अनौपचारिक ताकतों को भी देखने की नजर देता है। लॉबी, मीडिया, सामाजिक नेटवर्क्स, ये सब।
अच्छा, और
दूसरा, ये राजनीतिक दलों के काम करने का तरीका, उनकी अंदरूनी गुटबाजी या भ्रष्टाचार के पैटर्न को पहचानने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये चीजें अलग अलग शक्लों में हर जमाने में दिखती हैं। तीसरा, ये आज के मीडिया के माहौल, लोकमत कैसे बनता बिगड़ता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण को एक ऐतिहासिक नजरिए से देखने में मदद करता है। क्या ये सब कुछ बिल्कुल नया है या इसके बीच पहले भी मौजूद थे?
ये तो महत्वपूर्ण है।
और चौथा, जो देश संघीय व्यवस्था वाले हैं, जैसे भारत, वहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और तनाव को समझने का एक बेहतरीन फ्रेमवर्क देता है।
और हाँ, नागरिक शिक्षा के लिए भी ब्राइस का एक संदेश है ना, कि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है।
बिल्कुल, उनका मानना था कि लोकतंत्र उसमें हिस्सा लेने से सीखा जाता है। स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाना, अपने समुदाय में सक्रिय होना, ये करके सीखने वाली बात है। उन्होंने सामाजिक बराबरी और शिक्षा के मौकों को भी लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत जरूरी माना था।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही? मेरे लिए तो शायद ये जानना कि ब्राइस ने लोकमत को कितनी गहराई से देखा था और उसे कितनी केंद्रीय भूमिका दी थी। ये आज भी इतना सच लगता है, और जिस तरह उन्होंने पार्टी मशीनरी के काम करने का कच्चा चिट्ठा खोला था, वो भी काफी चौंकाने वाला था।
मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक है लोकतांत्रिक आदर्शों और जमीनी राजनीतिक हकीकत के बीच का वो कभी ना खत्म होने वाला तनाव। ब्राइस दिखाते हैं कि लोकतंत्र कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, यह हमेशा एक संघर्ष रहेगा जिसमें भ्रष्टाचार, औसत नेतृत्व, बहुमत का दबाव, ये सारी चुनौतियां बनी रहेंगी।
लोकतंत्र की नाजुकता की याद दिलाता है, और ये भी कि यह सिर्फ सजग और सक्रिय नागरिकों के कंधों पर ही टिक सकता है, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते।
बिल्कुल सही कहा। शायद ब्राइस हमें यही याद दिला रहे हैं कि लोकतंत्र एक लगातार चलने वाला प्रयोग है जिसे हर पीढ़ी को नए सिरे से सीखना और सहेजना पड़ता है।
और अगर ब्राइस ने अपने समय की अदृश्य शक्तियों को पहचाना था,
हाँ,
तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे समय की वो कौन सी अदृश्य या अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे लोकतंत्र को चुपचाप शक्ल दे रही हैं, जिन्हें शायद हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। ये सवाल हमारे श्रोताओं के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।